यह आकाशवाणी दिल्ली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर पर संवाददाता सम्मेलन में एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा, भारत की लड़ाई आतंकवादियों और आतंकी ढांचे से है, न कि पाकिस्तानी सेना से। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। दिल्ली विधानसभा का कल से शुरू होने वाला 2 दिवसीय सत्र स्थगित। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बवान क्षेत्र से 6 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सितूर के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला संबोधन होगा। पहलगाम आतंकी हमले में 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक मारे गए थे। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में कई आतंकी और सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया और 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। इससे पहले दोपहर में प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। कुछ देर पहले भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों की वार्ता भी संपन्न हुई। एयर ऑपरेशन के महानिदेशक DGAO एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा है कि भारत की लड़ाई आतंकवादियों और आतंकी ढांचे से है, न कि पाकिस्तानी सेना से। उन्होंने कहा कि दुखद है कि पाकिस्तानी सेना ने हस्तक्षेप कर आतंकवादियों का पक्ष लिया, जिसके कारण भारतीय सशस्त्र बलों को उसको करारा जवाब देना पड़ा। दिल्ली में सैन्य अभियान महानिदेशक की प्रेस वार्ता में एयर मार्शल भारती ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया कि अभियान के दौरान सेना ने नागरिक और सैन्य बुनियादी ढांचे को किस तरह कम से कम नुकसान पहुंचाया है।
We also iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorist, which compelled us to respond in kind. Dosto, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था।
एयर मार्शल भारती ने यह भी बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों की एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों में सेना, नौसेना और वायुसेना की रक्षा प्रणालियां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान द्वारा बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन और मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों को हमारे देश में विकसित सॉफ्ट और हार्ड किल काउंटर UAS सिस्टम और वायु रक्षा कर्मियों द्वारा विफल कर दिया गया। एयर मार्शल ने कहा कि भारत की युद्ध प्रणालियां समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं।
हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट, हाउ हैव इंडियन फोर्सेस मैनेज्ड टू मिनिमाइज द डैमेज टू बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री इंफ्रा इन द कंट्री इन स्पाइट ऑफ द अनरिलेंटिंग एफर्ट्स बाय द पाकिस्तानी फोर्सेस। मोस्ट ऑफ यू एंड द मेजॉरिटी पॉपुलेस within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force.
पिछले सप्ताह दुश्मन के खतरे का मुकाबला करने में हासिल परिणामों पर एयर मार्शल भारती ने कहा कि चीनी मूल की पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल लक्ष्य से चूक गई और लोइटर म्यूनिशन और मानव रहित हवाई प्रणालियों को नष्ट कर दिया गया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के ड्रोन, लड़ाकू विमान और मिसाइलों को नाकाम किया, जिससे देश को कम से कम नुकसान हुआ। सैन्य अभियान के महानिदेशक DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने कहा कि 9 और 10 मई की रात को जब पाकिस्तान की वायुसेना ने भारतीय एयरफील्ड और लॉजिस्टिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की, तो उन्हें मल्टीलेयर काउंटर ड्रोन और एयर डिफेंस ग्रिड द्वारा रोका गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत की हवाई रक्षा प्रणाली को भेदने का कोई मौका ही नहीं दिया गया।
हमें एयर डिफेंस
ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था।
डीजीएमओ राजीव घई ने ऑपरेशन में सहयोग के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं के बीच पूर्ण तालमेल रहा है। डीजीएमओ ने कहा कि इसमें सरकार विभागों और एजेंसियों तथा देश के 140 करोड़ लोगों का भी पूरा समर्थन है। नौसेना संचालन महानिदेशक डीजीएनओ वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा कि नौसेना एक समग्र नेटवर्क के बल के रूप में काम करती है जो सभी क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले खतरों से एक साथ निपटने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि कई सेंसर और इनपुट का उपयोग करते हुए नौसेना खतरों को बेअसर करने के लिए निरंतर निगरानी बनाए हुए है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विधानसभा में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
दिल्ली विधानसभा को देश की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। इस नई सौर परियोजना ने विधानसभा की 200 किलोवाट प्रणाली को प्रतिस्थापित किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि 500 किलोवाट का यह सौर ऊर्जा संयंत्र पर्यावरण स्थिरता के प्रति सरकार की वास्तविक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा एक विशिष्ट विरासत स्थल है जो नागरिकों को जिम्मेदारियों की याद दिलाती है। दूसरी ओर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल के माध्यम से सरकार के खर्चे में कमी आने की बात कही।
विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में लगातार जब हम एक एक कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं तो उसमें आज का दिल्ली विधानसभा में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। 9000 मेगावाट का कंजप्शन दिल्ली का, उसे मीट करना एक चैलेंज जरूर है, परंतु उसको ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए आज जिस तरीके से 500 किलोवाट की क्षमता का सोलर पैनल जब विधानसभा में लगेगा तो आपको मालूम है 15 लाख रुपए महीने की बिजली का खर्चा बचे।
इस पहल का उद्देश्य हरित ऊर्जा के माध्यम से प्रदूषण में कमी लाना और दिल्ली के लोगों को सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना है। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
दिल्ली विधानसभा का कल से शुरू होने वाला 2 दिवसीय सत्र स्थगित कर दिया गया है। 8वीं विधानसभा बजट सत्र के दूसरे भाग में सरकार द्वारा दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण और विनियमन पारदर्शिता विधेयक सदन में पेश किया जाना था। विधानसभा सत्र के लिए नई तिथि की घोषणा नहीं की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने यात्रियों की सुविधा के लिए गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पर को वर्किंग स्पेस की शुरुआत की है। अत्याधुनिक सुविधाओं वाले इस को वर्किंग स्पेस को पेशेवरों और उद्यमियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। NCRTC ने बताया कि इस स्मार्ट को वर्क स्पेस में 42 ओपन वर्क स्टेशन, 11 निजी केबिन और 2 मीटिंग रूम है। इनका इस्तेमाल 24 घंटे किया जा सकता है। दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि निगम के किसी भी प्रकार के शुल्क जमा करने से पहले निगम की वेबसाइट या कार्यालय से पुष्टि कर लें। निगम ने कहा कि उन्हें पता चला है कि कुछ व्यक्ति निगम के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का दुरुपयोग कर लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और उन्हें फर्जी रसीद दे रहे हैं। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। निगम ने नागरिकों से दलालों और ठगों के झांसे में न आने की सलाह दी है। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि बारापूला फेज 3 फ्लाईओवर का निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। श्री वर्मा ने आज परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इसका निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और शेष कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। श्री वर्मा ने कहा कि यह सिर्फ एक परियोजना नहीं बल्कि दिल्ली के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद नागर विमान परिचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद किए गए 32 हवाई अड्डों को अब तत्काल प्रभाव से खोल दिया गया है। इससे पहले इन 32 हवाई अड्डों को इस महीने की 15 तारीख तक नागर विमान परिचालन के लिए बंद रखा गया था। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने एक बयान में यात्रियों को सलाह दी है कि वे सीधे एयरलाइनों से उड़ान की स्थिति की जांच करें और नियमित अपडेट के लिए एयरलाइनों की वेबसाइट पर नजर रखें। दिल्ली हवाई अड्डे से विमानों की आवाजाही सामान्य बनी हुई है। हालांकि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल ने कहा है कि मौजूदा हवाई परिस्थितियों और बड़े सुरक्षा उपायों के कारण कुछ उड़ानों पर असर पड़ सकता है तथा सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरने में अधिक समय लग सकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे वेबसाइट से उड़ान की स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही हवाई अड्डे आएं और अपुष्ट खबरों से बचें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बवान क्षेत्र से 6 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी, उसकी पत्नी और उसके 4 बच्चे बांग्लादेश के कुरी ग्राम के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार ये परिवार बीते 5 वर्षों से हरियाणा और दिल्ली में रह रहा था। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान आरोपियों के पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद हुए हैं। गिरफ्तार लोगों को कानूनी प्रक्रिया के बाद बांग्लादेश भेजा जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जिम्नास्टिक के क्वालिफाइंग मुकाबले खेले गए। एक रिपोर्ट।
देश भर से आए खिलाड़ियों ने क्वालिफाइंग मुकाबलों में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए निर्णायक मुकाबलों में जगह बनाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा की। जिम्नास्टिक्स में आज रिदमिक जिम्नास्टिक्स के लिए क्वालिफाइंग मुकाबले हुए। इसमें लड़कियों के हुप, बॉल, क्लब्स और रिबन श्रेणी के खेलों के लिए मुकाबले हुए। हर श्रेणी में 8 खिलाड़ियों को चुना जाएगा जो आगे चलकर निर्णायक मुकाबलों में खेलेंगी। जिम्नास्टिक्स में बीते 2 दिनों से क्वालिफाइंग मुकाबले खेले जा रहे हैं और इसमें कल से निर्णायक मुकाबले शुरू हो जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राष्ट्रीय राजधानी को साइकिलिंग, निशानेबाजी और जिम्नास्टिक्स की मेजबानी का अवसर मिला है, जबकि अन्य सभी खेलों का आयोजन बिहार में हो रहा है। अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
आज बुद्ध पूर्णिमा है। गौतम बुद्ध का जन्म और परिनिर्वाण आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन उन्हें बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति भी हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर शहरवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा और दीक्षा विश्व को शांति, करुणा और आत्मबोध का मार्ग दिखाती हैं। उन्होंने कहा कि अहिंसा, धैर्य, समत्व और करुणा के 4 स्तंभों पर भगवान बुद्ध का दर्शन टिका है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलकर एक शांतिपूर्ण, सहिष्णु और समरस समाज की रचना करने का संकल्प लेने का आग्रह किया। उत्तराखंड में केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड से घोड़े और खच्चर की सेवाएं फिर शुरू हो गई हैं। ये सेवा 51 इन्फ्लुएंजा के डर से अस्थायी रूप से रोक दी गई थी। चिकित्सकों ने जांच के बाद 1709 पशुओं को सेवा के लिए स्वस्थ घोषित किया। और अब मौसम। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। हालांकि दोपहर के समय गर्म हवा के कारण तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। आज का अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मौसम सामान्य रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर पर संवाददाता सम्मेलन में एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा, भारत की लड़ाई आतंकवादियों और आतंकी ढांचे से है, न कि पाकिस्तानी सेना से। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। दिल्ली विधानसभा का कल से शुरू होने वाला 2 दिवसीय सत्र स्थगित। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बवान क्षेत्र से 6 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।